मुख्य समाचारों में फेडरल चुनाव में ग्रीन्स ने संसद के निचले सदन में किया अपनी चौथी सीट का दावा। टेक्सास पुलिस ने स्थानीय अधिकारियों के लिए सुरक्षा का आह्वान किया और भारत ने यासीन मलिक के मामले पर ओआईसी आईपीएचआरसी की टिप्पणियों को किया अस्वीकार्य। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। ग्रीन्स ने ब्रिस्बेन की क्वींसलैंड सीट पर जीत का दावा किया है। ये समझा जाता है कि ग्रीन्स के स्टीफन बेट्स ने ये सीट जीती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये ग्रीन्स की चौथी सीट है। श्री बेट्स कहते हैं कि उन्हें हमेशा विश्वास था कि पार्टी वही दर्शाती है जो मतदाता मांग रहे थे।
We knew they liked our policies because they were telling us. They told us they wanted to get 100% publicly owned renewable energy. They wanted dental and mental health into Medicare. They wanted action on the housing crisis. And it's, yeah, turned into a victory for us this afternoon.
ये तय करने के लिए कि लेबर नई संसद में बहुमत का दावा करेगी या नहीं, अब तीन अंतिम सीटों पर मतगणना जारी है। विक्टोरिया के मैकनमारा में लेबर के जॉश बर्न्स के पास एक संकीर्ण बढ़त है और उनके पीछे हैं ग्रीन्स के लिए स्टीफन हॉटकिन में और लिबरल की कॉलिन हार्किन तीसरे स्थान पर हैं। विक्टोरिया में डीकन और दक्षिण न्यू साउथ वेल्स में गिलमोर का निर्णय भी अभी बाकी है। गिलमोर में लिबरल उम्मीदवार एंड्रयू कॉन्स्टेंस लेबर सांसद फियोना फिलिप से सिर्फ 253 वोट से आगे हैं। टेक्सास के ग्रामीण शहर यूवाल्डी में पुलिस ने कथित तौर पर स्थानीय अधिकारियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कानून प्रवर्तन का आह्वान किया है। अमरीकी नेटवर्क CBS रिपोर्ट कर रहा है कि टेक्सास पुलिस चीफ्स एसोसिएशन ने पुलिस और यूवाल्डी के मेयर के खिलाफ भारी आलोचना और धमकियों के कारण ये आह्वान किया है। इस सप्ताह के शुरू में रॉब प्राथमिक स्कूल की शूटिंग के बाद प्रतिक्रिया पर रोष बढ़ा है। इस खुलासे के बीच धमकियां और आलोचनाएं हो रही हैं कि शूटिंग का जवाब देने वाले अधिकारियों ने कक्षा में जहां बंदूकधारी था उसमें घुसने से पहले लगभग एक घंटे तक इंतजार किया। ऐसे खुलासे भी हुए हैं कि छात्रों और शिक्षकों ने कक्षा के अंदर से 911 को बार बार फोन किया, पुलिस भेजने की गुहार लगाई। इस बीच नेशनल राइफल्स एसोसिएशन ने ह्यूस्टन में अपने वार्षिक सम्मेलन को आगे बढ़ाया है। राज्य भर में फायर आर्म्स पर सख्त नियमों की मांग जारी है। संगठन गंभीर कानूनी और वित्तीय उथल पुथल के बाद फिर से संगठित होने का प्रयास कर रहा है। संगठन दिवालिया होने की कगार पर था और उसके संकट में एक मुकदमा और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा धोखाधड़ी की जाँच शामिल है। NRA सम्मेलन के वक्ताओं ने टेक्सास के एक प्राथमिक विद्यालय में 19 छात्रों और 2 शिक्षकों के नरसंहार की निंदा की है, लेकिन उनका कहना है कि फायर आर्म्स तक पहुंच को प्रतिबंधित करना या अर्ध स्वचालित हथियारों पर प्रतिबंध लगाना इसका जवाब नहीं है। टेक्सास के सेनेटर टेड क्रूज का कहना है कि अमरीकी बंदूक कानूनों को बदलने से बंदूक मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन होगा।
Taking guns away from these responsible Americans will not make them safer, nor will it make our nation more secure. We must not react to evil and tragedy by abandoning the Constitution or infringing on the rights of our law-abiding citizens.
Volodymyr Zelensky ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण का विरोध करने वाले देशों द्वारा लगाए गए अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को अनदेखा कर रहा है। अमेरिका में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फ्रीमैन स्पॉगली इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के छात्रों को एक वीडियो संबोधन में यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस प्रतिबंधों को दरकिनार करने में सक्षम था क्योंकि इसके खिलाफ कोई एकजुट वैश्विक स्थिति नहीं थी। श्री जेलेंस्की का दावा है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने वाले कुछ देश भी मास्को को उनमें से अधिकांश को दूर करने में मदद कर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि वो अभी भी मास्को के खिलाफ प्रतिबंधों का समर्थन करते हैं।
Sanctions are the right weapon against Russia, the world's weapons against Russia, who's taking lives. But sanctions are the weapon that doesn't take lives. It just shows that violation of international law, human rights, sovereignty can't be violated. One cannot take someone else's property. Moreover, one cannot take people's lives. That's why these tools are so needed.
दक्षिण पूर्वी चीन में मूसलाधार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में कम से कम 13 लोगों की मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक रिपोर्टों में मरने वालों की संख्या 8 बताई गई, जिनमें 5 पीड़ित एक ढह गई फैक्ट्री की इमारत में पाए गए और 3 अन्य लोगों को वूपिंग में भूस्खलन के बाद एक इमारत में खोजा गया, जो फुजियान प्रांत के दक्षिण पूर्वी तटीय शहर ज्योमिन के लगभग 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अधिकारियों ने कहा कि यूनान प्रांत में 5 और लोग मारे गए और 3 अन्य लापता हैं। ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियो में सड़कों पर कीचड़ दिखाई दे रहा है। राज्य के मीडिया ने कहा है कि 1600 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया और तूफान से फसलों को नुकसान हुआ है और घरों की बिजली भी कट गई। एक नए सर्वेक्षण से पता चलता है कि कोविड-19 के कारण बच्चों की सामान्य दिनचर्या में व्यवधान उनकी शिक्षा पर प्रभाव डाल रहा है। देश भर में 1000 से अधिक माता पिता और देखभाल करने वालों के द स्मिथ फैमिली के सर्वेक्षण में पाया गया है कि 2/3 परिवारों के लिए इस साल फिर से स्कूल शुरू करना मुश्किल था, जबकि आधे से अधिक ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण बच्चों को अभी भी सीखने में मुश्किलें आ रही हैं। माता पिता ने बताया कि उनके बच्चे मानसिक स्वास्थ्य संबंधित परेशानी का सामना कर रहे हैं। वो या तो स्कूल छूट जाने के कारण है, या क्योंकि वो अलगाव में थे और या कोविड के साथ अस्वस्थ थे। इसके साथ ही बच्चे भविष्य में स्कूल में पढ़ाई के बारे में चिंतित हैं। और भारत ने शुक्रवार को यासीन मलिक से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में फैसले को लेकर OIC IPHRC की टिप्पणियों की निंदा की है। इन टिप्पणियों पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत टिप्पणियों को अस्वीकार्य पाता है। उन्होंने कहा कि इन टिप्पणियों के माध्यम से OIC IPHRC ने यासीन मलिक की आतंकी गतिविधियों के लिए समर्थन व्यक्त किया है, जिसके दस्तावेज हैं और जिन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। NIA अदालत ने जम्मू कश्मीर के यासीन मलिक को आतंकी फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। NIA कोर्ट ने मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। NIA ने उसके लिए मौत की सजा की मांग की थी। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के 71 सेंट और भारत के 55.66 रुपए के बराबर है। खेल समाचारों में साइकिलिंग में ऑस्ट्रेलिया के जय हिंडले गिरो डी टालिया के अंतिम सप्ताहांत में रिचर्ड कारपास से सिर्फ 3 सेकंड से पीछे हैं। 26 वर्षीय राइडर दौड़ के 167 किलोमीटर लंबे अंतिम चरण में अपना पूरा दांव लगाएंगे। ये बेलूनों से शुरू होकर मारमोल्डा के शिखर पर समाप्त होगी और अंतिम समापन से पहले इसमें 2 चढ़ाइयां शामिल हैं। और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी रविवार को पर्थ में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। एडिलेड में देर तक बौछारें, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 10 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 16 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री। होबार्ट में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 12 डिग्री, न्यूनतम 6 डिग्री। कैनबरा में भी आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 2 डिग्री। सिडनी में भी आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री। और डार्विन में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 32 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।